die Sorgen dieser Welt dicht wie Nebel mich befällt, wenn die ganze Höllenmacht auf meine Seele umgeht, dann höre ich die Stimme des Herrn, sei getrost, ich bin nicht fern, sehe doch, wie sehr ich dich geliebt. Sonnenschein und Regen, nicht so süß scheint mir. Er steht bei mir, in dem Sonnenschein und Regen.
प्रभु में मेरे प्यारे भाई और बहनों और वो सभी जो सारे संसार में इस ऑनलाइन ट्रांसमिशन पर जुड़े हुए हैं, हम ज्यूरिख से आपका अभिनंदन करते हैं और प्रभु की बड़ी आशीषें आपके लिए मांगते हैं। जबकि आप इस वचन को सुन रहे हैं हमारे वीडियो लिंक के द्वारा जो आप सुनने जा रहे हैं, हम प्रभु का बड़ा धन्यवाद करते हैं कि हमारे पास ये खास मौका है कि हम भाई फ्रैंक को लाइव सुन सकते हैं। और बड़ी आशीष आप सब पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु हमको आशीष दे कि वो हमारी ऐसी सहायता करे कि हम वो सारी चीजें प्राप्त कर सकें, और हमारे को सामर्थ्य दे, हमारे भाई को कुव्वत और सामर्थ्य दे और उसके बदन में और उसकी रूह में। और मैं इस शुरुआत में जो वचन मैं पढ़ने जा रहा हूँ वो यशाया नबी की किताब से, और यशाया 55 बाब से मैं पढ़ने जा रहा हूँ, और पांच एक से ग्यारह, यशाया पचपन एक से ग्यारह, यशाया पचपन एक से ग्यारह पढ़ने जा रहा हूं। ये सब प्यासे लोगों पानी के पास आओ, जिनके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल ले लो और खाओ, दाख मधु और दूध बिना रुपए और बिना दाम के ही आकर ले जाओ। जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो, जिससे पेट कभी नहीं भरता क्योंकि उसके लिए क्यों मेहनत करते हो, मेरी ओर मन लगाकर सुनो। सारी उत्तम वस्तुएं खाने के लिए पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो तब तुम जीवित रहोगे और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा, अर्थात दाऊद पर की अटल करुणा की वाचा। सुनो मैंने उसको राज्य राज्य के लोगों के लिए साक्षी और प्रधान और आज्ञा देने वाला ठहराया है। सुन तू ऐसी जाति को जिसे तू नहीं जानता बुलाएगा और ऐसी जातियां जो तुझे नहीं जानती तेरे पास दौड़ी आएंगी, वे तेरे परमेश्वर यहोवा और इज़राइल के पवित्र के निमित्त ये करेंगी, क्योंकि उसने तुझे शोभायमान किया है। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में लगे रहो, जब तक वो निकट है तब तक उसे पुकारो। दुष्ट अपने चाल चलन और अनर्थकारी और सोच विचार छोड़कर यहोवा की तरफ फिरे तो वो उस पर दया करेगा और हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वो पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा, क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में, मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आसमान और जमीन का अंतर है। जिस तरीके से वर्षा और हिम प्रकाश से गिरते हैं, जिस तरीके से बारिश हिम आकाश से गिरती है और वहां लौट कर नहीं जाती वरन भूमि पर पड़कर उपज उप जाती है, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है और व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, पर जो मेरी इच्छा है वो उसे पूरा करेगा और जिस काम के करने के लिए मैंने उसको भेजा है उसे सफल करेगा, पूरा करेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु की ओर खिंच जाएं, प्रभु की ओर फिर जाएं, जबकि वो नजदीक है और उसको खोजें और जब तक वो पाया जा सकता है, मिल सकता है, उसको पाएं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये आखिरी समय है, हमारे पास अभी भी अनुग्रह फजल मौजूद है कि हम प्रभु के पास लौट आएं और वो हमारी हिफाजत करता है, हमारा ध्यान रखता है, हम उसको, और ये हमारे पास अवसर है, मौका है कि हम उसके कलाम को सुन सकते हैं। और जैसा कलाम में लिखा है ग्यारहवीं आयत में, ये जिस काम के लिए भेजा गया उस काम को जरूर पूरा करेगा और कामिल करेगा और हमारी तैयारी बख्शेगा और उस दिन के लिए अपने उसकी प्रभु की वापसी के लिए हमारी तैयारी करेगा और जिससे कि हम अपने घर जा सकें उसकी दुल्हन बनके। और हम सबके अंदर खुदावंद ऐसा होने दे और ऐसा होने दे कि उसका ये कलाम हमारे अंदर, ये वचन हमारे अंदर बढ़ता चला जाए और हमारे को सही करे, हमारे अंदर सुधार करे। प्रभु हमसे आशीष दे और हमारी अगुवाई करे उस रास्ते पर जो उसने हमारे सामने रखा है। हम उसके आगे नतमस्तक होते हैं, उसके आगे झुकते हैं। और मैं दुआ करता हूँ हमारे वफादार पिता, और तेरे को ही सारा आदर और सम्मान और धन्यवाद मिले, और जो तू इतना वफादार है कि तू हमको आगे बढ़ाता रहता है, तू हमारे लिए मुहैया करता है, हमारे को सारी चीजें देता है, हमें वो सब चीजें फ्री मिलती हैं, बगैर दाम के मिलती हैं जो तूने हमारे लिए ठहराई हैं। हमें उसके लिए पैसे की जरूरत नहीं, आत्मिक भोजन के लिए हमें पैसा दाम नहीं देना पड़ता, तूने हमारे लिए मुफ्त मुहैया किया है। और तू आज भी हमारे साथ बड़ा अनुग्रही और फजल करने वाला है, और तू आखिरी लोगों को आज भी आवाज देकर बुला रहा है जिससे कि तू आखिरी जन भी आ जाए और तेरी राह को पाले और तुझे पाले। हे प्रभु, अपने स्वामी को, हे प्रभु अपने सेवक को आशीष दे, अपने खादिम को आशीष दे, और उसको बार बार उन चीजों से भरता जा, अपनी चीजों से भरता जा, और सामर्थ्य दे, कुव्वत दे, और उसको जिस जिस चीज की जरूरत है उसे प्रोवाइड कर। हम तुझसे दुआ करते हैं कि तू आज भी हमें आशीष दे, बरकत दे, और सब चीजों के लिए दिल से धन्यवाद करते हैं। आमीन। और मैं भाई फ्रैंक, अब मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं भी आप सबको बड़े हार्दिक तरीके से ज्यूरिक से आप सबका अभिनंदन करता हूं, और सबको और खुदावन की बरकतें और आशीषें की दुआ करता हूं। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं क्योंकि जो अभी वचन पढ़ा गया, कि जो भाई सेवा ने पढ़ा, हम अभी इसके पास वापस आएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, और जो भी वचन से हमको दिखता है उसी ओर बढ़ेंगे। मेहरबानी से समझें कि ये तो वो अद्भुत वचन है जो आखिरी समय का वचन है, और इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह की वापसी हो, ये सबसे अद्भुत और अनोखा और खास वचन है कलाम है। और उन लोगों के बारे में बता रहा हूँ, और मैं उनके बारे में बता रहा हूँ जो भीड़ जो खुदावन के पाक लहू से खरीदे गए हैं, जो उसके बेटे और बेटियां हैं, जिन्होंने नए जीवन को, नई जिंदगी को, हमेशा की जिंदगी को पा लिया है, और जो रैप्चर के अंदर शामिल होना चाहते हैं, क्योंकि ये सब सिर्फ उसी के बारे में है कि हम उन चीजों का अनुभव कर सकें, अपनी तैयारी को देख सकें, जिससे कि प्रभु की वापसी के लिए हम तैयार हो जाएं। जैसा लिखा है कि कहीं ऐसा ना हो ऐसा आप लोगों में से कि हम में से कोई पीछे रह जाए। पहला ये जो आखिरी संदेश है, आखिरी कलाम जो है, इसका प्रचार किया जाना चाहिए, इसको समझा जाना चाहिए पूरी संजीदगी के साथ, क्योंकि ऐसा लिखा है कि केवल वही जो तैयार थे वही मैरिज सफर में गए, वही विवाह के भोज में गए, उसके बाद दरवाजा बंद कर दिया गया। अब ये देखिए इस बारे में है कि क्या हर चीज में से जो खुदा के कलाम से बातें अग्री नहीं करती उनमें से बाहर आना है। और हमारा शख्सी तौर पे और व्यक्तिगत तौर पे हमारा अनुभव हमारी नजात के साथ सालवेशन के साथ हो जाए और हम इस चीज को अनुभव करें कि हमारा नया जन्म भी हुआ है और हमारी बहाली हुई है, हमारी पवित्रता हो रही है और हम रोज बरोज पवित्र आत्मा से भरते जाते हैं। और प्रभु के उन वादों को हम विश्वास करते हैं जो इस समय के लिए हैं और हमारा हिस्सा उनके पूर्ण होने में, उनके कामिल होने में है। और शुरू में जो कलाम पढ़ा गया वो इतना जबरदस्त कलाम पढ़ा गया और ये पूरा का पूरा सरमन था। और हम अब हम दो आयतों की तरफ देख रहे हैं। यहाँ हम देखते हैं, हम पढ़ते हैं रोमियो एक पहली और दूसरी आयत। यहाँ पर पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है, प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस समाचार के लिए अलग किया गया जिसकी उसने पहले से ही भविष्यवक्ताओं के द्वारा पवित्र शास्त्र में ये जो वचन है प्रेरित का, ये आज ये अभी जो वचन पढ़ा गया आज भी उस पर ये कामिल उतरता है, पूरा उतरता है। हम ऐसा ही कुछ सब कुछ विश्वास नहीं कर लेते, हम उस पर भरोसा करते हैं जो खुदा ने पहले से ही वादा कर दिया और उसने उसको कामिल भी हकीकत भी बना दिया नए अहदनामे के अंदर। और हमारा उद्धार, और ये तो आत्मिक गिफ्ट है, आत्मिक भेंट है हमारे लिए। और हम ये कहते हैं और जो भी हम कहते हैं वो तो जो नबूवत की चीजें हैं, भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कई चीजें हैं जो पुराने और नए अहदनामे में बताई गई हैं, उस पर हमारा भरोसा है। पुराने अहदनामे में वादे किए गए और नए अहदनामे में उनका पूरा होना, उनका कामिल होना बताया गया। और फिर और आज हमारा, आज हम इस चीज के हिस्सेदार हैं कि खुदावंद आज क्या कर रहा है। अब हम आगे चलते हैं, हम पढ़ते हैं यशाया 55 और तीसरी आयत को पढ़ते हैं। यशाया 55 और तीसरी आयत, यशाया 55 और तीसरी आयत, कान लगाओ और मेरे पास आ जाओ, सुनो तब तुम जिंदा रहोगे और मैं तुम्हारे साथ हमेशा की वाचा करूंगा। और वो जो दाऊद पर मैंने करुणा की थी वो भी। ये कितना जबरदस्त कलाम है, क्योंकि खुदावन आपसे बात करता है और मुझसे भी, वो हम सब से बात करता है। अपने कानों को मेरी ओर लगाओ। हम अपने कान किधर लगाते हैं, किसकी ओर फेरते हैं? सारे लोगों ने अपने अपने काम अलग अलग, अपने कान अलग अलग कलीसियाओं और चर्चेज में और शिक्षाओं में लगा रखे हैं, अलग अलग धर्मों में अपने कान लगा रखे हैं। जो वहां पढ़ाया जाता सिखाया जाता उसकी ओर उन्होंने अपना ध्यान लगा रखा, पर प्रभु साफ तौर पे बता रहा है कि जो मेरे बचाए हुए लोग हैं, मेरे छुटकारा दिए हुए लोग, उनको आज्ञा देता है। और फिर आज भी आप और मैं, हम अपने अपने कान, क्योंकि वो कहता है मैं तुमसे बात करूंगा, मैं वो सारी वादे वो सारी वाचाएं पूरा करूंगा जो कि मैंने दाऊद से करी थी। और पर अपने कान, बशर्ते कि तुम मेरी ओर लगाओ, तब मैं वो वादे वो वाचाएं तुमको भी दूंगा जिससे कि तुम्हारा ईमान, तुम्हारा विश्वास इस चीज पर गढ़ जाए जो कि प्रभु के दिए हुए वादे हैं। मेरे भाई और बहनों, ये जोर देकर कहा जाना चाहिए कि बगैर वादे के विश्वास तो किया ही नहीं जा सकता अगर वादा ना हो, और वो तो अपने आप बनाया हुआ ईमान हो जाएगा जो वादे के बगैर है। जो असली वादा है वो तो इस पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि हम हमारे कान प्रभु की ओर लगे रहें और उसके वचन को, उसके कलाम को हम सुनते रहें और उन वादों पर ईमान रखे रहें जो उसने हमसे किए हैं। अब्राहम हमारा पहला उदाहरण है और खुदा ने उसको प्रॉमिस दिए, उसको वादे दिए और उसने उन पर यकीन किया और वो पूरे हो गए। हम वो आत्मिक बीज हैं जो अब्राहम को बिलोंग करता है। हम उन वादों को जानते हैं, उनको मानते हैं और उनको अपने जीवन में पूरा होते भी देखते हैं और प्रभु को सारा आदर और महिमा मिले। ये ना भूल जाएं मेरे भाई और बहनों कि प्रभु यूं फरमाता है, अपने अपने कानों को प्रभु की ओर लगा कर रखें, किसी और की ओर नहीं, और प्रभु की ओर ही लगा कर रखें। प्रभु कहता है मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। हम आगे बढ़ते हैं अजाया 55 और 11वीं आयत को पढ़ते हैं। 11वीं आयत को अब हम पढ़ते हैं, 55 की 11वीं आयत। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है वो व्यर्थ ठहर कर, यानी कि जाया ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, पर जो मेरी इच्छा है वो उसे पूरा करेगा और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है वो उसको सफल करेगा, पूरा करेगा। और प्रभु सच्चे जिंदा खुदावन का धन्यवाद हो कि कितनी सफाई से इस कलाम में उसने बयान किया। उसने कहा कि मेरा वचन कभी भी खाली नहीं जाएगा। ये हम सब के लिए है, हम सब से के लिए कहा गया और हम सब में पूरा होगा उस काम के लिए, उस मकसद के लिए जिसके लिए उसने हमें ये भेजा। और हम खुदावंत का शुक्र करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि इस समय में जब इतनी सारी आवाजें और धार्मिक आवाजें सुनने को आ रही हैं इधर उधर से, और तब भी हम अपने कानों को उनकी तरफ नहीं बल्कि खुदावन के कलाम की तरफ लगाते हैं और इस चीज को पहचानते हैं और रिकॉग्नाइज करते हैं कि उसने हमारे लिए क्या कहा और जो उसने हमें वादे दिए उनको हम पहचानते हैं और वो हमसे बात कर रहा है और अपना कलाम वो हमसे कर रहा है, इस वक्त का कलाम वो हमसे कर रहा है। और ये कलाम आपके अंदर और मेरे अंदर वो सारा कुछ पूरा करेगा, कामिल करेगा जो जिस पर्पस के लिए, जिस काम के लिए उसने इस वचन को हमारे पास भेजा, जैसा अभी हमने पढ़ा, और ऐसा ही होगा। और सारी महिमा और प्रशंसा प्रभु को मिले। आगे पढ़ते हैं रोमियो 12 और पहली आयत, रोमियो 12 और 1। हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया को याद दिलाकर कहता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और महिमा को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, और यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। ये देखिए, ये भी उसी का हिस्सा है, ये कलाम भी मेरे भाई और बहनों, जैसा हमारे प्रभु ने हमको पूरी तरीके से अपने आप को दे दिया हमारे लिए, उसने अपने बदन को और खून को हमारे लिए दे दिया। भाइयों और बहनों, क्या अब ये हमारे लिए कामिल ना होगा कि हम भी अपने जिस्मों को खुदावन के हुजूर दे दें, सिर से लेकर पैर तक दे दें, हमारी आंखें और हमारे कान, हमारा मुंह, हमारे हाथ, हमारे पैर, ये सब कुछ पूरे तौर पर, कामिल तौर पर हम खुदावन के लिए इसको हाजिर कर दें, खुदावन की शरण में इसको दे दें, जिससे कि उसकी सेवा हो सके और जिससे कि प्रभु अपनी सेवा को हमारे द्वारा और अपनी कलीसिया के द्वारा और फिर हमारे द्वारा वो उन सारी चीजों को पूरा करे जो कि उसने करने के लिए ठहराया था और ठहराया है और वादा किया है। और इसके लिए हम कहते हैं हालेलुया, कहते हैं आमीन भी कहते हैं। और हम हे प्यारे प्रभु, हम तेरे सामने मौजूद हैं और हम आत्मा शरीर और जीवन में तेरे सामने हैं। तूने हमारा छुटकारा किया, तूने अपने खून से हमें छुड़ाया, हम तेरे हैं और हमेशा हमेशा के लिए, अनंत काल तक के लिए। अब हम पढ़ते हैं रोमियो 12 और दूसरी आयत को पढ़ते हैं, और इस संसार के सदृश ना बनो, पर तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते जाओ। खुदावन की तारीफ हो, बहुत धन्यवाद हो। और इतना गंभीर और संजीदा वचन अभी हमने पढ़ा, जब जो कि अभी पढ़ाया गया, अभी बताया गया, जो हमसे किया गया है ये कलाम, कि हमको ये बताया जाए, हमारे मनों को, हमारी सोच को, हमारी समझ को, हमारे जीवन को, जिससे के खुदावन का की जो इच्छा है वो हमारे जीवन में, हमारे जिंदगी में पूरी हो जाए। अभी जैसा हमने पढ़ा कि अच्छा और भला चाल चलन और परमेश्वर की इच्छा हमारे अंदर पूरी हो जाए और मेरी और आपकी जिंदगी में पूरी हो जाए, जिससे कि हम ये कह सकें, सारी अच्छे दिल से कह सकें कि मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। ऐसा नहीं जैसा कि मैं चाहता हूं, पर जैसा कि तू चाहता है। और इससे कि हम संसार के हिसाब से, संसार के तरीके से थे ना चलें, हम दुनिया में तो हैं पर दुनिया के नहीं है। और प्रभु हम सबको ऐसा फजल दे, ऐसा अनुग्रह दे कि हम इन चीजों को, अब इस चीज को समझ सकें कि खुदावन का कलाम, और विश्वास के साथ ये जाने और आज्ञा मानने से, हुक्म मानने से जाने और कहें, हे प्यारे खुदावन, तू हम मेरे से बात कर, मैं मानता हूँ, मैं ग्रहण करता हूँ और मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि तेरा कामिल, तेरी इच्छा, तेरी एब्सोल्यूट इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। मैं तेरे सामने हूँ, मैंने अपने आप को तेरे सामने डाल दिया है प्रभु, और मैं धन्यवाद करता हूँ कि खुदावन ने मुझे इतना अच्छा कलाम दिया। अब हम पढ़ते हैं इफिसियों पांच और पहली और दूसरी आयत, इफिसियों 5 पहली और दूसरी आयत। इसलिए प्रिय बालको, के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो जैसा मसीह ने तुमसे प्रेम किया, और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट चढ़ा के बलिदान कर दिया। ये देखिए, ये कलाम भी दिल को लगने वाला है कि पूरी तरीके से समर्पण कर देना, पूरे तरीके से अपने शरीर को, अपनी जान को, अपनी आत्मा को प्रभु के आगे समर्पित कर देना, और प्रेम में हो करके, एक दूसरे के लिए प्रेम में हो करके, अगर हम प्रभु से मिले हुए हैं प्रेम में, तब हम आपस में भी उसी प्रेम में मिले रहेंगे। और जो परमेश्वर का प्रेम है, वो वही प्रेम हमारे जीवनों में भी होना चाहिए पवित्र आत्मा के द्वारा, पाक रूह के द्वारा। ये सिर्फ समझ का फेर नहीं है, ये एक अनुभव है, ये एक एक्सपीरियंस है जो कि हमारी नजात का तजुर्बा हम कर रहे हैं, कि खुदावन का जो प्रेम है ये हमारे जीवनों में, खुदावन का प्यार जो है ये पाक रूह से शामिल होता है, पाक रूह से घर करता है, जिससे कि हम तभी हम अपने दुश्मनों को भी प्यार कर सकते हैं। पर हम खुदावन की जो जिस्म है उसके जो हिस्से हैं, हम आपस में उसी प्रेम में जुड़े हुए हैं। पहला कुरिन्थियों 12 के अनुसार, उसकी 12 और 13 आयत के अनुसार, हम एक बदन में, एक शरीर में हमारा बपतिस्मा हुआ, प्रेम में होकर एक ही आत्मा के द्वारा हमारा बपतिस्मा हुआ, और हम उसके शरीर के अंग हैं, और खुदावन इस शरीर में आकर के कामिल होना चाहता है, दिखाना चाहता है, और बाद में आखिर में, और ये वो सारी बात को वो पूरा करेगा, कंप्लीट करेगा, क्योंकि हम विश्वास करने से चल करके देखने तक की सिचुएशन तक पहुंच जाएं, और जबकि वो हमें अपने घर ले जाता है। आगे पढ़ते हैं, और फिलिपियों 2 बाब हम पढ़ते हैं, फिलिपियों 2 और उसकी 7वीं और 8वीं आयत, पर उसने अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का रूप स्वरण कर लिया, मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन कर दिया, यहां तक कि आज्ञाकारी रहा कि मौत, हाँ क्रूस की मौत भी सहली। हमारे प्रभु का बड़ा धन्यवाद हो। भाइयों और बहनों, ये राजाओं का राजा, ये हमारा प्रभु, ये जो अव्वल और आखिर है, वो वही है। इसने अपने आप को इतना शून्य कर दिया, इतना नम्र कर दिया कि दास बन गया, एक सेवा करने वाला हमारे लिए बन गया, जिससे वो खुदा की उस आज्ञा को पूरा कर सके, जिससे कि उद्धार के काम को पूरा कर सके, क्योंकि यही तो सारे उद्धार की योजना है। क्योंकि इंसान जो गिर गया था वो दोबारा बहाल कर दिया जाए और दोबारा से नया कर दिया जाए, और जिससे कि मनुष्य के जो पुत्र हैं वो परमेश्वर के यानी खुदावन के बेटे और बेटियां बन जाएं, और नए जीवन से हम खुदावन के बच्चे और खुदावन के बेटे और बेटियां बन गए हैं। ये देखिए कितना महान बात है, कितनी जबरदस्त बात है कि उसने, वो हमारे, हमारा जो प्रभु और हमारा बचाने वाला था, उसने हमारे जामे को पहन लिया, जिससे कि हम उस आत्मी जामे को पहन सकें, उसके उसके बलिदान के द्वारा और वो नेचर, वो चरित्र, वो विचार, वो आत्मिक चरित्र हमारे अंदर बन सके। ओ ये उस प्रभु के लिए हम कितने धन्यवादी हैं, क्योंकि उसने हमारे लिए उद्धार के काम को संपन्न कर दिया, पूरा कर दिया, कंप्लीट कर दिया। अब हम पहला पत्रस 1:14, पहला पत्रस 1:14, आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो। प्रभु का धन्यवाद हो और हम सबको ये समझ आ जाए, और छोटे और बड़े हरेक को ये समझ आ जाए कि हमको आज्ञाकारी बच्चों की तरफ, हुक्म मानने वाले बच्चों की तरह बनना है। इस चीज को समझें जो शुरू में बताया गया था कि हमें अपने कानों को खुदावन की तरफ लगाना है, क्योंकि तब मैं तुमसे बात करूंगा। और अब प्रभु हमसे बात कर रहा है उनकी तरफ जो आज्ञा मानने वाले बच्चे हैं, उनसे बात कर रहा है जो विश्वास करते हैं जैसा उसने कहा अपने वादों में, और उनके लिए जो ये मानने को तैयार हैं, जो उसकी इच्छा मानने को तैयार हैं। और ये हमारे जीवन में पूरा हो जाए, कामिल हो जाए, कि हम इस संसार की लालसाओं के हिसाब से ना चलें, बल्कि अपने आप को पवित्र कर लें और एकजुट हो जाएं और परमेश्वर के साथ एकजुट हो जाएं, और वो आज्ञाकारिता और वो हमारे जीवनों में वो जाहिर हो जाए, वो आज्ञाकारिता जाहिर हो जाए। खुदावन हम सबको खुदावन काश मुझे और आप सबको ऐसा होने दे खुदावन के पाक नाम में। हम दोबारा इफिसियों चार बाईस से चौबीस। और पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य को जो बरवाने वाली आवश्यकताओं के साथ है उतार डालो, और अपने आप को अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ, और नई इंसानियत को पहन लो जो खुदा ने के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। प्रभु जीवते परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम इन सारी बातों को व्यक्तिगत रूप से अनुभव कर सकते हैं, कि हमारा पूरे तरीके से हम नए बन जाएं, हमारे अंदर पूरी बहाली हो जाए, और हम इस प्रकार से प्रभु से जुड़ जाएं यहां धरती पर, और ये आत्मिक चाल चलन हमारे अंदर पूरी तरीके से जाहिर हो जाए फजल के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा। अब हम संसार की उन भावनाओं और इच्छाओं और लालच और लालसाओं में नहीं रहते, पर अब हम अपने आप को प्रभु के लिए और हम अपनी आत्मा को, अपने जान को और अपनी आत्मा को उसके सामने निछावर करते हैं, समर्पित करते हैं, और ये हमारे जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। विश्वास करें और कि ऐसा होगा, विश्वास करें। इब्रानियों 2:10-11, क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है उसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि वो बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए, तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे, क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल से हैं, इसी कारण वो उन्हें भाई कहने से नहीं ले जाता। वो उन्हें भाई कहने से नहीं ले जाता। हम इस वचन के लिए आमीन कहते हैं। भाइयों और बहनों, क्या आपने सुना कि अभी क्या पढ़ा गया पवित्र वचन से? अब इस सारांश में हम ये कह सकते हैं निचोड़ में, आज हमारे पास वही पिता है और उस उद्धारकर्ता का वही पिता है जैसा लिखा है पवित्र आत्मा, कि पवित्र आत्मा तेरे ऊपर छाया करेगी, और ये कहा गया था मरियम को, और जो तुझसे पैदा होगा वो परमेश्वर का पुत्र खुदावन का बेटा कहलाएगा। इसी तरीके से खुदा का बेटा कहलाया जाएगा, इसी तरीके से पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आती है और वो नया जीवन हमारे ऊपर बना दिया जाता है और हम नए सिरे से जन्म लेते हैं कि हम नई आशा में आ जाएं, और हम परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद करते हैं कि हम पर ऐसा कि जो उद्धार करने वाला और जो उद्धार किए हुए लोग हैं, हम दोनों का एक ही पिता है, नजात दहिंदा का, नजात पाए लोगों का एक ही पात का। और फिर वो कह सकता है, कहता है कि मैं अपने पिता की ओर जाता हूँ और तुम्हारे पिता की ओर भी जाता हूँ, मैं अपने अपने परमेश्वर और तुम्हारे अपने खुदा और तुम्हारे खुदा की ओर जाता हूँ। वो सब पैदा किए में से सब पहला उठा है और हम उसी कंडीशन में, उस आत्मिक परिस्थिति में, स्थिति में, उस नजात के जो कामिल काम है उसमें हमारी स्थापना की गई है। और हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि हम इस चीज का अनुभव कर सकते हैं कि हमारे अंदर जो बदलाव, हम अपने शरीरों का बदन के बदलाव को भी अनुभव कर पाएंगे और हम प्रभु के साथ ऊपर उठा लिए जाएंगे। और प्रभु आप जो खुदा आप सबको आशीष दे, हम सबको आशीष दे और उन और अपनी अपने फजल से हमें आशीष दे। आगे पढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं गलतियों चार और उसकी पांच आयत, गलतियां चार और पांच, गलतियां चार और पांच, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और लेपालक होने का पद मिले। हमको लेपालक पुत्रों का अधिकार मिल गया। हमारे छुड़ाने वाले ने, हमारे उद्धार करने वाले ने, इज़राइल जो उसके वादे के लोग हैं, उसने सब का उद्धार किया जो उसके बनने वाले थे, जो सारे संसार में से उसके थे, उसने सब का उद्धार किया। उसने हमें पुत्र होने का अधिकार दिया जिससे कि हम खुदा के बेटे और बेटियां बन जाएं। और हम दुआ कर सकें, हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पाक माना जाए। ये वो सच्चाई है जो आत्मिक रूहानी सच्चाई है जिसका हम अनुभव करते हैं और हम इसका अनुभव करते हैं रैप्चर तक। पर हम ये भी ईमान रखते हैं आज भी कि सब कुछ जो खुदा ने वादा किया, जो प्रभु ने वादा किया, वो हमारे जीवन के अंदर पूरा हो जाएगा। सच्चाई हमारे अंदर बन के वो जाहिर हो जाएगा हमारे द्वारा, जब तक के हमारा बदलाव, जब तक के हमारे शरीरों का बदलाव ना हो जाए प्रभु के आने के समय तक। हमारे प्रभु के आने तक। आगे पढ़ते हैं रोमियो 8 और उसकी 14 आयत। रोमियो 8 और 14, रोमियो 8 और 14, इसलिए जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र है। हम इसके लिए आमीन कह सकते हैं। मेरे भाई और बहनों, अब सवाल यह है कि आत्मा के चलाए यानी पाक रूह के चलाए कौन चलता है? हम सब जानते हैं जो खुदा का पाक कलाम है ये हमारे को उभारता है पाक रूह के द्वारा जो रसूलों के को मिला और फिर नबुवत करने वालों को मिला। और हम सब जानते हैं कि नया अहदनामा, ये नया अहदनामा जब शुरू हुआ ये तो पाक रूह के उंडेले जाने से शुरू हुआ अमाल की किताब में और नए अहदनामे में। और तब से उस वक्त से खुदावन का रूह हमारे साथ कलीसियाओं में, यीशु की कलीसिया में काम करता है और वो सारी गिफ्ट्स और वो सारे फल और सारी भेंटें और वो अगुवाई जो पाक रूह की है वो कलीसिया में पाई जाती है। जो सच्चे ईमानदार हैं उनमें ये बातें पाई जाती हैं। खुदावन का रूह हमारी अगुवाई करता है, हमको लीड करता है सच्चाई की ओर और खुदावन का कलाम ही सच्चाई है। इसलिए जो शुरू में हमें बताया गया, खुदावन यूं फरमाता है कि अपने कानों को मेरी ओर लगाए रखो तो मैं तुमसे बात करूंगा, तुमसे वाचा बांधूंगा, अहद बांधूंगा। और वो कलाम जो आगे जो मेरे मुंह से निकला हुआ कलाम है वो कभी भी वापस नहीं आता बगैर असर के, जब तक के वो उस असर को ना पाले, उस काम को ना कामिल कर ले जिसके लिए वो भेजा गया और वो चीजें पूरी ना हो जाएं जिनके लिए वो चीजें जहूर में ना आ जाएं जिसके लिए उस कलाम को भेजा गया। हालेलुया। और मैं ये कहता हूं आपसे, ये पूछता हूं, क्या कुछ जो खुदा ने कहा वो वापस गया? क्या वो सब कुछ वैसा ही जहूर में नहीं आया जैसा कि खुदावंत खुदा ने कहा? जब उसने कहा कि रोशनी हो जाए तो रोशनी हो गई। आप पूरे क्रिएशन के जो पैदाइश की पूरी कार्रवाई उसको देखें, जैसा जैसा उसने कहा वैसा वैसा हो गया। और वो सच्चाई थी, वो वास्तविकता थी। और इसी तरीके से जो खुदा ने हमसे प्रॉमिस किया वो भी हमारे लिए आत्मिक तौर पे सच्चाई बन जाता है। इसका विश्वास करें इस पर। खुदावन ने खुद जिम्मेदारी ली इसके लिए और उसने अपने आप से कहा, उसने खुद अपनी कसम के कहा कि वो सारे के सारे वादे हाँ और आमीन है। और ये भी कि मैं नबी भेजूंगा और उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं नबी भेजूंगा, ये भी उसका वादा था, इससे पहले कि सूरज अंधेरा हो जाए और खून खून के जैसा चांद लाल हो जाए, इससे पहले कि उद्धार का दिन खत्म हो जाए, उद्धार का दिन समाप्त हो जाए। खुदा ने ऐसा वादा किया एलिया की सेविकाई में, मैं नबी भेजूंगा। आप जानते हैं इस वचन को जानते हैं कि पुराने और नए नियम में हम जानते हैं कि ये कैसे, चाहे वो मलाकी हो, चाहे वो मत्ती 17 हो, और भी कई वचनों के अंदर वो पाया जाता है। हम जानते हैं हमारे अंदर ये वचन पाया जाता है, हमारे सामने ये वादा पाया जाता है। और क्या होगा, हर चीज अपनी पुरानी हालत में बहाल की जाए, जहां जैसे वो शुरू हुई प्रभु की सच्ची और जिंदा कलीसिया के अंदर जैसे वो शुरू हुई। और जो अब जो अपने कानों को उसकी ओर लगाते हैं, उसके वादों पर ईमान रखते हैं, जो उसके वादों पर ईमान नहीं रखता, जो इस वक्त के लिए मुकर्रर है, उसने अभी तक अपने कान को खुदावंद की तरफ या खुदा के कलाम की तरफ नहीं लगाया। वो तो अपनी शिक्षाओं और अपने विचारों, अपने जहन के हिसाब से चल रहा है। पर प्रभु ने कहा मुझसे और आपसे कि अपने अपने कानों को मेरी ओर लगा लो और उन सारे वादों के लिए जो हमारे इस वक्त के लिए मुकर्रर हैं, कि इससे पहले कि प्रभु की आमद हो, खुदावन की आमद हो, हर चीज बहाल की जाएगी और वापस उस हालत में बहाल की जाएगी जो शुरुआत वाला, और हर एक शिक्षा और हर एक वो बात जो है वैसे ही होगी जैसे कि शुरू में थी, वैसे ही अंत के समय में होगी। वही शिक्षा, वही अनुसरण और वही परमेश्वरत्व, वही बपतिस्मा, वही प्रभु भोज, वही चुनाव, वो पहले से चुनाव और वो गिरावट, जो पाप आना ये, और जो उद्धार है, ये सारी के सारी जो विषय हैं, ये वैसे ही वापस हो जाएगी। ये बताया जा चुका, इसका प्रचार हो चुका। एक ऐसा समय कभी भी नहीं आया संसार में 2000 साल के अंदर, जब से नया ऐहदनामा शुरू हुआ, जिसमें के पूरी पूरी की सब पूरी सारी बातें इस तरीके से बता दी गईं और प्रचार कर दी गईं। और हमने अब तो हम उस पवित्र से भी पवित्र पाक तरीन में प्रवेश कर सके हैं, और जो कलाम जो है ये हम पर रिवील किया जा चुका है, नाजल किया जा सका है, और उसका और कलीसिया जो है अपने वापस अपने उसी हालत में बहाल कर दी गई जैसा हमने पढ़ा। जब तक ये पूरा नहीं होगा, खुदावन के कलाम का पूरा होना जरूरी है। उसके नाम को महिमा मिली। जो हमारे लिए असंभव लगता है, नामुमकिन लगता है, खुदा के लिए सब कुछ मामुमकिन है, सब कुछ मुमकिन है। अब ये जरूरी बात आती है सामने, अगर मैं और आप इस बात का यकीन कर सकें अपने मन से, अपने सच्चे दिल से, जो खुदा ने इस वक्त के लिए हमारे लिए मुकर्रर किया, तब खुदा हमारे अंदर वो सारी बातें वापस ले आए, वो ला सकता है और वो लाएगा। खुदावन के नाम की महिमा हो और प्रशंसा हो। हमारे पास सिर्फ संदेश नहीं जो खुदावन के आने की दूसरी आमद की तैयारी करता है, बल्कि जो उसके पहले जो होना है वो पूरा बताया गया है, उसके बारे में बताया गया है। और जिनके पास कान है, जैसा लिखा है मुकाशफा 2:3 में लिखा है, 7 बारी लिखा है, जिसके पास कान हो वो सुने के रू कलीसियाओं से क्या कहता है। ये नए नामे का वचन है और ये हमारे लिए है, ये हमसे बोला गया है, ये हमसे मुखातिब है। और जैसा बताया गया, जैसा कि इसके बारे में पुराने अदनामे में बताया गया था कि जिसके पास कान है वो अपने कान खुदा के कलाम की लगो। मैं खुदावंद आप सबको फजल दे। और अब हम इस बात को खत्म करते हैं, और एक बार फिर से मैं आप सबको सारी दुनिया में ज्यूरिक से और खुदावन का बड़ा शुक्र करते हैं, जिसने के इस संदेश को, इस कलाम को हमारे लिए भेजा, और इसने भाई ब्रैनम को आशीष दी और बरकत दी बड़े खास तरीके से, और उन सारी बातों को खुदा ने उनके द्वारा हम पर बताया, जाहिर किया, और जो इस संसार के, इस वचन के अंदर, इस वेदी के ऊपर, इस दीपदान के ऊपर दिखाया गया और सारे संसार को बताया गया। मेरे भाइयों और बहनों, मैं वापस उन सालों की तरफ देखता हूं जब भाई ब्रैनम को प्रभु ने बुला लिया और अब 170 देश हैं जहां पर मैंने प्रचार किया है और इन सारे के सारे सालों में 55 सालों में आना और जाना लगा रहा, एयरपोर्ट जाना और एयरपोर्ट से आना लगा रहा और मैं यात्रा करता रहा, मैं सफर करता रहा सारे संसार में और मैं ये देखता रहा कि ये प्रचार करता रहा, बताता रहा कि खुदावन ने हमसे क्या कहा। जैसे भाई ब्रैनम ने अपना जो अपनी आज्ञा पूरी करी, अपनी सेवा पूरी करी, उसी प्रकार से जो प्रभु ने मुझे आज्ञा दी, जो प्रभु ने मुझे सेवा सौंपी, मैंने भी पूरी करी। और मैं फिर जोर देकर कहना चाहता हूं कि हर समय जब भी मैं पढ़ता हूं कि जो भाई ब्रैनम को प्रभु ने बताया, खुदा ने बताया जून 11 को 1953 में, 1933 में, 1933 में वो मुझे छूता है और खुदावन ने इतने सालों के अंदर उस बात को, ये जो आखिरी संदेश है, ये आखिरी संदेश उस वादे के अनुसार संसार के कोने कोने में पहुंचा दिया गया और मैं खुश हूं, प्रसन्न हूं जब 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 वो कहता है इस बुलावट के अंदर कि मैं नहीं बल्कि जैसे नबी ने कहा कि ना कि मैं बल्कि ये संदेश, ये कलाम, ये हम सब इसके द्वारा जुड़े हुए हैं, हम सारे देशों में इससे जुड़े हुए हैं, हर एक भाषा में जुड़े हुए हैं और सब इस आखिरी पुकार को सुन रहे हैं इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह का आना हो। और मैं आपसे पूछता हूं भाई और बहनों, जो शुरू में जो कलाम पढ़ा गया उसको दिल से दोबारा पढ़ें, उन अल्फाजों को दोबारा पढ़ें और खुदावन के कलाम का हर एक एक शब्द आप जैसा कि कहा गया, जिसके लिए वो भेजा गया, वो कभी भी बेकार जाया नहीं जाएगा, उसको पूरा करेगा जिसके लिए वो भेजा, जिसके लिए वो भेजा गया, जो खुदावन ने, जो खुदा ने वादा किया वो पूरा होगा। क्योंकि खुदावन की जो कामिल मर्जी है वो हमारे जीवन में पूरी हो, नाजिल हो और हम आज्ञाकारी बच्चों के समान हम उन सब का अनुभव कर सकें, अपनी तैयारी को उस महिमामय दिन के लिए तैयार कर सकें। और जितने भी सेवा करने वाले भाई हैं, खादिम भाई हैं, जो सारी जुबानों में काम करते हैं, उनको भी आशीष मिले और ये आत्मिक भोजन आगे देते जाएं और बढ़ाते जाएं। और हम सिर्फ रोटी से नहीं, पर हम जो खुदावन के मुंह से निकलता है, एक एक वर्ड, एक एक शब्द जो हमने सुना, खुदावन की महिमा हो, बहुत धन्यवाद हो उसके उसके अद्भुत वचन के लिए और खुदावन ने जो हमसे बातचीत करी उसके लिए उसका धन्यवाद हो। और उसका कलाम आज भी उतना ही ताजा है, उतना ही जीवन जीवित है जैसा कि वो जब उसने कहा था, वैसे ही आज भी वो ताजा और जीवित है और वो देख रहा है और वो ताक रहा है और उसने जो कुछ कहा वो पूरा हो रहा है, हमारे साथ पूरा हो रहा है। और उसके नाम की महिमा हो और प्रशंसा हो, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में हालेलुया, आमीन, 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 आमीन।
Sie, 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 S